आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम। मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आज यानी शुक्रवार 27 मार्च 2026 को। आज है साल का 86वां दिन। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुरुन लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा उसके लिए आइए एक फटाफट नजर डालते हैं प्रोग्राम की रूपरेखा पर। सबसे पहले सुनेंगे देश और दुनिया की मुख्य खबरें और साथ ही भारत की कुछ सुर्खियां भी। आज बात करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट का युद्ध अब हमारे घरों में अपना असर दिखा रहा है। साथ ही एक खास अंश होगा माइग्रेशन को लेकर लेबर सरकार ने जो कुछ नए उपाय लागू किए हैं उनके बारे में। फिर आज आपको मिलवाएंगे मेलबर्न में रहने वाली हरविंदर जैन से, जिनकी नई किताब शादी को समझने और उसे सफल बनाने के व्यवहारिक तरीके साझा करती है। और फिर आखिर में शो के मूड को बनाएंगे संगीतमयी कुछ प्यारे से गीतों के साथ। तो अगर आपकी भी किसी गीत की फरमाइश हो तो मुझे अभी लिख भेजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही के शो में उसे बजा दूं। नंबर है 04397997667। और हाँ, आज तो एक गिव अवे भी लाई हूँ मैं आपके लिए, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा। कुछ ही देर में बताऊंगी कि क्या है वो गिव अवे और कैसे आप उसे जीत सकते हैं। अपनी मौजूदगी का एहसास कराना मुझे मत भूलिए। अपने संदेशों के जरिए कौन कौन है आज मेरे साथ जुड़ा हुआ और कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइएगा। तो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में और आज के शो का सवाल भी होगा, पर आइए सबसे पहले जायजा लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का। नमस्कार, शुक्रवार 27 मार्च 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। कोलिशन ने ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए 3 महीने के लिए फ्यूल एक्साइज को आधा करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस अस्थायी कटौती की भरपाई इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म करके, होम बैटरी सब्सिडी को रोककर और ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकारी सब्सिडी में कटौती करके की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री का कहना है कि फिलहाल के लिए ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित है। सोमवार को वे नेशनल कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे जिसमें हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय समन्वयक के साथ मिलकर इस संकट से निपटने के लिए कई उपायों पर विचार किया जाएगा। एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि एक समन्वित राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया जरूरी है जिससे कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान हुई कुछ गलतियों से बचा जा सके। न्यूजीलैंड सरकार ने संभावित ईंधन की कमी से निपटने के लिए 4 चरणों की योजना पेश की है। फिलहाल देश पहले चरण में है जहां कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। दूसरे चरण में घरों और व्यवसायों को ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में ईंधन को जीवन रक्षक जरूरतों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। चौथे चरण में ईंधन वितरण पर और कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे। मंत्री विलिस का कहना है कि इस योजना को जारी करने का उद्देश्य जनता को यह भरोसा दिलाना है कि वैश्विक परिस्थितियां जैसी भी हों, न्यूजीलैंड उससे निपटने के लिए तैयार है। ट्रॉपिकल साइक्लोन नेरल ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट केप के सिरे पर स्थित एक्समाउथ के पास लैंडफॉल किया है। यह भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं ला रहा है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ ने सिडनी के कई अस्पतालों में हुई गंभीर घटनाओं की एक श्रृंखला पर बनी रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने का वादा किया है, जिनमें 2 ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें मरीजों की मौत हुई थी। मृतकों में वे मरीज भी शामिल हैं जो पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच सिडनी के प्रिंस एल्फ्रेड हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट यूनिट में एस्परजिलस फंकस के एक क्लस्टर से संक्रमित हुए 6 लोगों में से थे। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अमेरिकी बैंक नोटों पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर दिखाई देंगे। उनके हस्ताक्षर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेंट के साथ होंगे और वे पहले ऐसे मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम अमेरिकी मुद्रा पर होगा। ٹرمپ اور بیسن کے ہستاکشر والے پہلے $100 کے نوٹ جون میں چھاپے جائیں گے۔ اور اب خبر بھارت سے۔ رائٹرز کے انوسار ایران یدھ کے کارن آپورتی پربھاوت ہونے اور ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بنے رہنے کے بیچ بھارت نے پیٹرول اور ڈیزل پر وشیش اتپاد شلک میں کٹوتی کی ہے۔ گروار کو جاری سرکاری آدیش میں بھارت کے وت منترالے نے پیٹرول پر وشیش اتپاد شلک کو پہلے کے 13 روپے پرتی لیٹر سے گھٹا کر 3 روپے پرتی لیٹر کر دیا، ساتھ ہی ڈیزل پر شلک کو 10 روپے سے گھٹا کر شونیہ کر دیا گیا ہے۔ آج کے لیے مکھیہ سماچاروں میں بس اتنا ہی۔ انیہ خبروں اور جانکاریوں کے لیے جڑے رہیے ایس پی ایس ہندی کے ساتھ ہماری ویب سائٹ sps.com.au/hindi یا پھر ایس پی ایس ہندی کے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کے ذریعے۔ دھنیواد۔تو دوستو، یہ تھیں آج کی سرخیاں۔ اب باری ہے وعدے کے مطابق آج کے گیو اوے کے بارے میں بتانے کی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک کا میسج تو میرے پاس آ ہی گیا ہے، اس کے جواب کا مجھے لگتا ہے کھیاتی جی آپ روز ہمارا شو سنتی ہیں اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آج میں کیا سوال پوچھنے والی ہوں۔ تو اس ہفتے ہم دے رہے ہیں بھوت بنگلہ اس فلم کے ڈبل پاسز، اور ان پاسز کو جیتنے کے لیے آپ کو میرے بڑے ہی آسان سے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے کہ فلم بھوت بنگلہ میں فیمیل لیڈ کون ہے، اور اس کا جواب آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور ای میل آئی ڈی کے ساتھ 04397997667 پر۔ اور یاد رہے 1 اپریل 2026 کو جو ہے یہ کانٹیسٹ بند ہو جائے گی، تو آپ اس سے پہلے پہلے اپنا جواب ہم تک بھیج دیجئے کہ فلم بھوت بنگلہ میں فیمیل لیڈ کون ہے۔ تو چلیے آئیے پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے۔ جب تک آپ میسج بھیج رہے ہیں ہم چلتے ہیں آگے۔ تو پچھلے کئی ہفتوں سے آپ ایران اور اسرائیل کے یدھ کے بارے میں اور اس کی وجہ سے بڑھتی پیٹرول قیمتوں کے بارے میں تو سنتے ہی آ رہے ہیں، پر اب یہ جنگ صرف خبروں میں نہیں ہمارے گھروں، نوکریوں اور روزمرہ کی زندگی تک بھی پہنچ رہی ہے۔ کیسے اور کس روپ میں، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
نمسکار، ایس بی ایس ہندی پر میں ہوں سوادی شرما۔ سوچیے آپ الیکٹرک کار استعمال کرتے ہیں، پیٹرول پمپ پر رکنا نہیں پڑتا، ایندھن کی چنتا نہیں، اور جب کوئی کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کیا چنتا، میں تو سیٹ ہوں۔ اس خیال کو ابھی کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں، پہلے کچھ اور باتیں ذرا صاف کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹکراو چل رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے ساتھ، وہ اب آپ کے پیٹرول ٹینک سے کافی آگے پہنچ چکا ہے۔ اس یدھ کی مار اب آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے اپنی رسوئی میں، اپنے گھر کے کرائے، اپنے بزنس، اپنی نوکریوں میں بھی۔ کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ایک ٹرم ہے جسے سمجھنا ہوگا۔ تو مہنگائی یعنی انفلیشن، یہ تو آپ جانتے ہیں، جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یعنی چیزوں کی قیمتیں بڑھی، کرایہ بڑھا، یہ مہنگائی ہے۔ پھر ہے مندی یعنی ریسیشن، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ارتھ ویوستھا دھیمی پڑ جاتی ہے، لوگ نوکری کھو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، وہ ہے ریسیشن۔ اب سوچئے کیا ہو اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، نوکریاں جا رہی ہیں اور تنخواہ وہیں کی وہیں، اور سرکار کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، کیونکہ اگر بیاج در بڑھاؤ تو نوکریاں اور جائیں گی، اور گھٹاؤ تو مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ اس ستھتی کو کہتے ہیں سٹیگ فلیشن۔ پچھلی بار دنیا اس حالت میں تھی 1970 کے دشک میں، تب بھی مڈل ایسٹ کے ایک ٹکراو نے تیل کی آپورتی کو توڑ دیا تھا، اور وہی تصویر آج دوبارہ دکھائی دے رہی ہے۔ آئیے یہاں پر ہم پروفیسر ونود مشرا، جو موناش یونیورسٹی میں ایک ارتھ شاستری ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔
اسٹیگفلیشن جو ہے یہ ایک ریئل چیز ہے، اگر یہ سٹارٹ ہو جائے تو اٹ ول پرسسٹ فار اے ویری لانگ ٹائم۔ ابھی شارٹ ٹرم میں اس بات کو کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیگفلیشن جیسی استھتی بن رہی ہے۔ یہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو کرنٹ جو آئل پرائز شاک ہے ابھی، جو مطلب تیل کی قیمتیں جو بڑھی ہوئی ہیں آپ کے ایران امریکہ وار کی وجہ سے، یہ کتنے سمے تک پرسسٹ کرتی ہیں۔ میرا اپنا انمان یہ ہے کہ اگر یہ وار ود ان 3 منتھس میں ختم ہو جاتا ہے اور واپس آئل کا فلو اور گلوبل اکانومی موو کرنے لگتی ہے جیسے پہلے موو کر رہی تھی، تو اس کا ایفیکٹ مطلب کچھ سمے تک رہے گا، بٹ اٹ ول ناٹ ٹرانسلیٹ انٹو اسٹیگفلیشن۔ آپ کا انفلیشن کا ایک شاک آئے گا، مہنگائی بڑھے گی، شاید انمپلائمنٹ بڑھے، لیکن اتنا ہو کے مطلب واپس استھتی نارمل ہو جائے گی۔ اگر یہ استھتی پرسسٹ کرتی ہے، پرسسٹ کرنے میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ میرا یہ ہوگا کہ اگر یہ 6 مہینے سے 12 مہینے کی رینج میں جاتی ہے، تو دیر از اے ریئل ڈینجر کہ ہم لوگ اسٹیگفلیشن کی طرف پڑھ رہے ہیں آسٹریلیا میں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اسٹیگفلیشن ہوتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہے وہ ہائرنگ اور नए इम्प्लॉयमेंट वगैरह देना कम कर देंगी, तो इससे जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
अब ये तो आप समझते ही होंगे कि तेल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता। हमारा भोजन उगाने के लिए किसान जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों की पैकेजिंग में, घर बनाने की सामग्री में, कपड़ों के धागों में और हमारी ऑनलाइन शॉपिंग हम तक पहुंचाने में भी, यानी रोजमर्रा के अधिकांश कामों में ईंधन, चाहे वो तेल हो या गैस, किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। तो जब मिडल ईस्ट में तनाव की वजह से आपूर्ति बाधित होती है, यह अतिरिक्त खर्च कहीं न कहीं से तो वसूला जाता है, और वो कहीं है आम जनता, यानी आप और हम। अब जरा चलते हैं असल जिंदगी में और शुरुआत करते हैं रसोई से, क्योंकि यहाँ इसका असर सबसे ज्यादा दिख भी रहा है और महसूस भी हो रहा है। नाइट्रोजन खाद जो दुनिया भर की खेती के लिए जरूरी है, वो बनती है प्राकृतिक गैस से, यानी गैस महंगी तो खाद महंगी, किसान की लागत ज्यादा, और वो लागत सीधे सीधे आती है आपके खाने की थाली में। और सिर्फ खाद ही नहीं, जो चीजें ऑस्ट्रेलिया में बाहर से आती हैं, वो स्यूज कनाल और लाल सागर के रास्ते से आती हैं। टकराव की वजह से ये रास्ते अब खतरनाक और महंगे हैं, तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन, ज्यादा खर्च, और वो खर्च रुकता है दुकान की शेल्फ पर आकर बड़े हुए प्राइस टैग के साथ। खाने का तेल, दाल, आयातित सामान, ये सब इसी कड़ी का हिस्सा है। पर सिर्फ खाना ही नहीं, इस हफ्ते खबर आई कि क्वांटस ने न्यूजीलैंड के लिए अपनी उड़ानें कम कर दी हैं। विमान का ईंधन सीधे तेल से आता है, तो जब ईंधन महंगा होता है, विमान कंपनियां फलस्वरूप फ्लाइट रूट्स को कम कर देती हैं। कुछ ने तो पहले ही ईरान के ऊपर से उड़ना बंद कर दिया है। सीधे सीधे कहूँ तो लंबे रास्ते यानी ज्यादा ईंधन यानी महंगे टिकट। और अब घर बैठे बैठे हम जो सामान मंगाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए, डिलीवरी, गोदाम, परिवहन, सब तेल पर चलता है, तो वो खर्च भी आप तक पहुंचता है, यानी महंगे सामान के रूप में। अब बात करते हैं उसकी जहां शायद यह सब सबसे ज्यादा महसूस होता है, छोटे कारोबार जैसे रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, दुकानदारी, इन सब के बिजली के बिल, परिवहन का खर्च पहले से अधिक हो गया है। यानी जब ओवरऑल खर्च बढ़ेगा तो मुनाफे का दायरा छोटा हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहली मार झेलनी पड़ती है कर्मचारियों को। ऑस्ट्रेलिया में अभी तनख्वाह उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं। घर का किराया ऊपर, किराना ऊपर, बीमा ऊपर, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं मिली।
जब इस तरह की स्थिति आती है तो जो ऑलरेडी जिसके पास जॉब होती है उनको लगता है कि अगर मेरी वेज नहीं बढ़ती है इन्फ्लेशन की स्पीड से, तो मैं तो इफेक्टिवली पुअर हो रहा हूँ ना, अनअफोर्डेबल हो रहा है हर चीज। तो उस समय क्या होता है कि लोग हायर वेज के लिए बार्गेन करते हैं। अब अगर लोग हायर वेज के लिए बार्गेन करते हैं तो वेज इज इनपुट फॉर प्रोडक्शन, तो कंपनी क्या करती है कि अगले साइकिल में प्राइसेस बढ़ा देती है। तो इससे जो स्टैगफ्लेशन का सबसे बड़ा डेंजर है वो है वेज और इन्फ्लेशन का जो स्पाइरल शुरू हो सकता है, जिससे कि पता चला कि एक कंटिन्यूअस साइकिल में फंस गए। लोग हायर वेजेस डिमांड कर रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके रिस्पॉन्स में, और कंपनीज हायर नहीं कर रही तो बेरोजगारी बढ़ रही है।
तो अब आते हैं शुरुआत में हमने जो बात की थी उस इलेक्ट्रिक कार वाले व्यक्ति की, जिसे पेट्रोल पंप पर नहीं जाना और जो सोचता है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आज के इस पॉडकास्ट का सार यही है कि फर्क तो पड़ रहा है जीवन के लगभग हर पड़ाव में, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में, क्योंकि आज तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है। इन हालातों में स्टैगफ्लेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इसका कोई जल्द ही हल होगा या नहीं, यह भी अभी नहीं कहा जा सकता। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और उसके वैश्विक परिणामों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, और इससे जुड़ी ताजा जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आए स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है। SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपने लिए विशेष सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
तो दोस्तों, यहाँ समय हो गया है पहले अंतराल का। ब्रेक के बाद जानेंगे माइग्रेशन से जुड़े नए बदलावों के बारे में, और साथ ही होगा आज का सवाल भी। तो जुड़े रहिए SBS हिंदी पर, मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो मेरे पास मैसेजेस आपके बहुत सारे आ रहे हैं, जो आज गिव अवे हम चला रहे हैं SBS हिंदी पर, उसके लिए आपको बता दूं कि सवाल जो मैंने पूछा है गिव अवे के लिए वो ये है कि आपको मुझे बताना है कि फिल्म भूत बंगला, जो जिसमें अक्षय कुमार हैं, उनमें फीमेल लीड कौन है,
और आपको अपने जवाब के साथ अपना नाम और ईमेल आईडी भी भेजना है ताकि आप तक टिकट पहुंचाई जा सके। तो ये आप मुझे भेज दीजिए। इसके अलावा आज एक सवाल है जो आपसे मुझे पूछना है शो के दौरान, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप अपने जवाब मुझे भेजते रहेंगे। सवाल है आज का सीधा सीधा सा, आपको आज मुझे बताने हैं ऐसे गीत जिनमें सावन का शब्द आता है। सावन तो बहुत सारे गीत हैं, हिंदी गीत, सोचिए कौन कौन से गीत आपके दिमाग में आ रहे हैं और मुझे जल्दी से जवाब भेज दीजिए। नंबर है 04397997767। तब तक हम लेते हैं भारत की खबरों का जायजा।
पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात से निपटने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर आम लोगों में चिंता है, लेकिन सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। पेट्रोल पंपों में लंबी कतारों के पीछे अफवाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लोगों से न घबराने की अपील की है। घबराहट में आकर एलपीजी या पेट्रोल खरीदने से समस्या आ सकती है। सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि एलपीजी गैस और पेट्रोल के पर्याप्त स्टॉक हैं, एक महीने का स्टॉक मौजूद है और नई सप्लाई भी हो रही है। सरकार के दावों के बावजूद विपक्ष ने तैयारियों को नाकाफी बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध अगर लंबा खिंच गया तो हालात और बदतर होंगे।
हम तो अपने घर में मिट्टी के दो चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई, हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर एक दो महीना, तीन महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे, अब बताइए गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा गैस पे नहीं भरोसा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया।
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करवाई करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी, लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी, जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या।
योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि वे सरकार का साथ दें।
ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के, कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है, जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संकट पर विचार विमर्श करेंगे। हालात का जमीनी जायजा लेने के लिए यह मीटिंग रखी गई है। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के जरिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के बारे में यह ऑनलाइन बैठक होगी। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल जैसे चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत संकट के समाधान को लेकर अपनी बात रख रहा है। फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने ऊर्जा संकट के मुद्दे को उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी जोर दिया है। गुरुवार को सम्मेलन से इतर उन्होंने अपने कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ भी बात की। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सरकार के प्रयासों का समर्थन योग गुरु बाबा रामदेव ने किया है। उन्होंने कहा कि संकट के समाधान में भारत की भूमिका उपयोगी हो सकती है।
इन सारे आर्थिक राजनीतिक संकटों का समाधान संवाद से निकलेगा और उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और मैं आश्वस्त हूं निभाएगा।
और अब चर्चा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर राज्य में इसका व्यापक असर देखने को मिला। रामनवमी को राजनीतिक रंग देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही। वैसे सबसे ज्यादा उत्साहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नजर आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा राम भरोसे है। राम के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं,
राम का काम कोई रोक नहीं सकता, जो भी बाधा बनेगा उन्हीं का काम तमाम होगा।
राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया गया है। इस बार TMC को भी राम और दुर्गा काली जैसे धार्मिक प्रतीकों से कोई परहेज नहीं है। राज्य में कांग्रेस पार्टी और वाम दलों की स्थिति 3 में न 13 में जैसी हो गई है, यानी ये दोनों दल कमजोर पड़ चुके हैं। इधर असम में कांग्रेस भले ही कमजोर हो लेकिन सत्ताधारी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही पेश कर रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इससे भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने इस बार असम की लड़ाई को असली बनाम नकली कांग्रेस की लड़ाई बताया है।
भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है क्योंकि वहाँ जो लड़ाई है भाजपा के लोग जान गए हैं कि हम तो लड़ नहीं रहे हैं। वहाँ जो लड़ाई है वो असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच में है। असली कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई कर रहे हैं और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हेमंत विश्व शर्मा कर रहा है और हेमंत विश्व शर्मा पूरे देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है और उनका अहंकार उनका गुरूर वो सातवें आसमान पे है।
पश्चिम बंगाल और असम के अलावा केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
तो दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद अब लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक और उस पार बात करेंगे माइग्रेशन से जुड़े नए बदलावों के बारे में। और मेरा सवाल का जवाब भी देना मत भूलिएगा। सवाल है सीधा सीधा सा है कि आपको आज मुझे बताने हैं ऐसे हिंदी गीत जिनमें सावन शब्द आता है। मेरे पास कुछ जवाब पहले आ चुके हैं। भूमिका जी ने बताया है मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, और राजेंद्र वोहरा जी ने बताया है सावन का महीना पवन करे शोर। तो आपके मन में भी आपके दिमाग में भी कोई गाने हैं जिनमें सावन का शब्द आता है तो मुझे अभी बता दीजिए। नंबर है 0439-799-767। आप भेजिए अपने जवाब, मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS के हिंदी प्रोग्राम में। मैं हूं स्वाति शर्मा। तो दोस्तों माइग्रेशन को लेकर लेबर सरकार ने कई नए उपाय लागू किए हाल ही में, जिनमें निक्सन समीक्षा की सिफारिशों पर आधारित माइग्रेशन एजेंटों के लिए कुछ नए नियम भी शामिल हैं। क्या हैं ये नियम और इन्हें क्यों लागू किया जा रहा है, बता रही हैं नताशा कॉल।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सरकार आए सभी पार्टियों की नीति ये रही है कि माइग्रेशन प्रणाली को सही तरीके से संचालित किया जा सके। इस संबंध में सरकार समय समय पर कई नए कानून बनाती रहती है। हाल ही में लेबर सरकार ने माइग्रेशन एजेंटों से जुड़े कुछ ऐसे ही नए नियम घोषित किए हैं। तो यदि माइग्रेशन एजेंट लोगों को ऑस्ट्रेलियाई वीजा दिलाने में मदद करना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हर साल नैतिकता प्रशिक्षण और अपने कर्तव्यों पर नियमित रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। हाल ही में कुछ एजेंटों को वीजा आवेदन में टेम्पलेट स्टेटमेंट और कथित झूठी जानकारी का उपयोग करने तथा अवैध रूप से आवेदकों से उनके नियोक्ता के प्रायोजन शुल्क वसूलने के लिए दंडित किया गया है। असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर सिटीजनशिप कस्टम्स एंड मल्टीकल्चरल अफेयर्स जूलियन हिल ने कहा है कि पंजीकृत एजेंटों के लिए कड़े पेशेवर मानक अप्रैल से लागू होंगे। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि एजेंट एक दिन में केवल सीमित ऑनलाइन प्रशिक्षण घंटे ही पूरा कर सके। ये कड़ी निगरानी उस समय लाई जा रही है जब प्रवासन स्तरों को लेकर सार्वजनिक चिंता बढ़ रही है। नवीनतम रिजॉल्व पॉलिटिकल मॉनिटर के अनुसार अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोगों का मानना है कि प्रवासन संख्या बहुत अधिक है और अल्बनीजी सरकार इस पोर्टफोलियो को बिना योजना और अनियंत्रित तरीके से संभाल रही है। तो आइए इस भाग में सुनते हैं कुछ माइग्रेशन एजेंटों की प्रतिक्रिया जो इन नियमों पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। माइग्रेशन एजेंट सुमन दुआ बताती हैं।
जो माइग्रेशन एजेंट रेगुलेशन थे वो थी 1998 से, तो 30 इयर्स से, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 30 इयर्स से कोई चेंजेस नहीं हुए थे, बट जो अब रेगुलेशन है वो चेंज हो रही है 1 अप्रैल 2026 में। अब फोर न्यू लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे 1 अप्रैल 2026 को। तो उसमें जो मेन जो इनका मकसद है ये चेंजेस करने का, ऑफ कोर्स इट इज फॉर स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, लूपहोल्स को वो क्लोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहली चीज वो कर रहे हैं कि जो डॉजी एजेंट्स जिनको हम बोल देते हैं या एजेंट्स जो बार्ड हैं या सस्पेंडेड हैं, वो कई बार ऑपरेट कर रहे होते हैं बाय वर्किंग विद यू नो लाइक विद देयर फैमिली मेंबर की, जैसे रजिस्ट्रेशन कर ली, न्यू बिजनेस रजिस्टर कर लिया किसी और के नाम पे, तो वो उस चीज को अब पहले वो टारगेट कर रहे हैं, उस चीज को क्लोज कर रहे हैं। अभी प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट इन्होंने उसमें लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट में एड कर दिया, उसको थोड़ा सा फॉर्मल कर दिया है। The other thing is that has happened is कि English language test अभी तक क्या था, सिर्फ IELTS आप कर सकते थे या TOEFL कर सकते थे, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड थे। अब उन्होंने 6 टेस्ट ऐड कर दिए हैं, PTE भी ऐड कर दिया उसमें, और उसमें अब 2 साल की जगह 3 साल के लिए वैलिडिटी कर दी है सब टेस्ट की। अब एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो है उसका भी एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट उन्होंने अपडेट किया है, लिस्ट अपडेट किया है। जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का मास्टर्स प्रोग्राम था वो अब उन्होंने रिमूव कर दिया है, और ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी का मास्टर्स प्रोग्राम जो है ऐड कर दिया है। बाकी जो 6 ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सो ये जो सारे हैं मेन चेंजेस हुए हैं। एक और थोड़ा सा था कि शायद वो फीस भी अपडेट करेंगे रजिस्ट्रेशन की फॉर माइग्रेशन एजेंट्स, वो उन्होंने अपडेट नहीं की है, विच इज अगेन अ गुड थिंग क्योंकि द होल पॉइंट वॉज कि वो इस प्रोसेस को बेटर करना चाहते थे फॉर द कंज्यूमर्स बेसिकली, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो हाई करना चाहते हैं। सो दीज आर द ओवरऑल अपडेट्स रिगार्डिंग द माइग्रेशन एजेंट रेगुलेशन जो अभी आ रही है 1 अप्रैल 2026 में।
तो नए बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं, माइग्रेशन एजेंट सीमा चौहान बताती हैं।
ये जो चेंजेस हैं वो माइग्रेशन एजेंट्स के जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको अपडेट और मॉडर्न बनाने के लिए हैं, और एजुकेशन और असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स को क्लियर और अप टू डेट रखने के लिए है। ऑल्सो इंश्योर करने के लिए है कि माइग्रेशन एजेंट्स प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, कंज्यूमर्स को अनक्वालिफाइड एडवाइस से प्रोटेक्शन मिले। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि एजुकेशन एजेंट्स की नॉलेज अप टू डेट हो, तो ऑब्वियसली अगर उनकी नॉलेज अप टू डेट होगी और उसमें प्रोसेसेस में बेटरमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि लेजिस्लेशन इन प्लेस हो ताकि स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए बाय सीपीडी प्रोवाइडर्स। जैसे सीपीडी प्रोवाइडर्स होते हैं वो जो ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए भी है, तो अगर उनके ऊपर अच्छी खासी निगरानी रखी जाएगी तो माइग्रेशन एजेंट्स के ऊपर भी उनके द्वारा जो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो एक्यूरेट एंड अप टू डेट नॉलेज होगी।
जी सीमा, ये बताइए कि चार नए नियमों की बात हो रही है जो लागू किए जाएंगे, तो अगर हम आपसे पूछे कि सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि कौन से वो चार नियम हैं, क्या क्या बदलने वाला है माइग्रेशन एजेंट के लिए?
तो एक तो जो नए माइग्रेशन एजेंट बन रहे हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी सेट गाइडलाइंस आ गई हैं कि कौन सा कोर्स एक्सेप्टेबल होगा, जिन्होंने पुराना कोर्स जैसे ग्रेजुएट डिप्लोमा अब कोर्स है तो वो यूनिवर्सिटी के साथ कोर्स का नाम अटैच किया वो बताया जा रहा है, उसके साथ जिन्होंने पहले ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया था वो किस डेट तक एक्सेप्टेबल होगा, जो नए माइग्रेशन एजेंट्स हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के लिए थोड़े एक्सेप्टेबल प्रोवाइडर्स एक्सपैंड हो गए, मतलब नए टेस्ट भी दिए जा सकते हैं, फिर उनके मिनिमम स्कोर्स क्या है, टेस्ट रिजल्ट्स अब 3 साल तक वो वैलिड होंगे, अगेन उसमें भी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स है, तो नए माइग्रेशन एजेंट्स के लिए भी चेंजेस आए हैं, तो जो जो नए इंडस्ट्री में आएंगे उनके लिए भी यू नो देयर इज बेटर चेंजेस फॉर द एक्चुअल प्रोफेशन, तो एक तो ये है। फिर है जो चेंजेस आए हैं सीपीडी प्रोवाइडर्स के लिए, तो उनके लिए थोड़े रूल्स आए हैं,
वेरी
चेंजेस आए कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो जो हम नॉलेज लेते हैं हर साल उनके लिए भी लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं, और आए चेंजेस द माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चार्ज पे भी आए हैं, तो अब यह बोला जा रहा है कि जो चार्ज जो हम हर साल रजिस्ट्रेशन फी देते हैं वो अब गवर्नमेंट कंसिडर करेगी कि इन फ्यूचर बजट प्रोसेस उसको obviously, I think increase किया जाए, तो वो भी इसमें लागू होता है।
ये बताइए कि जो माइग्रेशन एजेंट बनना चाहते हैं उनको किन बातों को अब की तरफ ध्यान देना चाहिए?
Obviously, जो कोर्स कर रहे हैं यू नो दे हैव टू मेक श्योर कि वो करेक्ट कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर पहले नहीं है तो थ्रू द प्रोसेस उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट हो जाए, those are the main changes, बाकी तो इसमें ज्यादा changes नहीं है, but वो भी काफी flexible बना दिया ताकि you know ज्यादा testings हो in terms of providers, तो ज्यादा providers आ चुके हैं अब and minimum requirement बता दी गई है कि कितना minimum आपको चाहिए होगा, तो वो pre-prepare कर सकते हैं कि is this ये score मेरे लिए achievable है भी है नहीं है।
तो जैसा कि आपने सुना एजेंट प्रशिक्षण के नए नियमों के अलावा सरकार उन शिक्षा प्रदाताओं की सूची को भी अपडेट करेगी जो नए एजेंटों को कोर्स प्रदान करते हैं और उन प्रदाताओं की संख्या बढ़ाएगी जो एजेंटों की अंग्रेजी भाषा क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मानक माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ओमारा द्वारा किए जाते हैं जो एक सरकारी रेगुलेटर है। लेबर द्वारा लागू किए गए कई नए उपाय निक्सन समीक्षा की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसे 2022 के चुनाव के बाद पूर्व होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने कमीशन किया था।
तो दोस्तों इस अंश के बाद अब आरी है अगली रिपोर्ट की, जिसमें हमारी सहयोगी नताशा कॉल ने बात की है मेलबर्न में रहने वाली हरविंदर जैन से, जिनकी नई किताब बता रही है शादी को समझने और उसे सफल बनाने के व्यावहारिक तरीके। आइए सुनते हैं आज इस अंश का पहला भाग।
SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नताशा कॉल। इस अंश में आज हम आपकी मुलाकात एक लेखिका से करवा रहे हैं जिनका नाम है हरविंदर के जैन,
जिनका जन्म पंजाब में हुआ। वैसे तो पेशे से ये आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन अब मेलबर्न में ये कुछ और कर रही हैं।
पढ़ाई के दौरान इन्हें अपना जीवन साथी मिला जिसके साथ इन्होंने विवाह किया और एक सुखद जीवन बिताने का सपना देखा, लेकिन शादी के बाद इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब इन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा और उसको नाम दिया Wifed in India। तो हरविंदर की कहानी क्या रही, शादी के बाद क्या उनका जीवन सीमित रहा और क्यों उन्होंने पारंपरिक दायरे में रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाई, ये सवाल उनकी कहानी के जरिए समझा जा सकता है। तो आइए जुड़ते हैं हरविंदर के जैन से जो आज हमारे साथ अपनी किताब के बारे में चर्चा कर रही हैं।
हरविंदर जी, SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी कहानी क्या है और किताब लिखने का ये सफर किस प्रकार शुरू हुआ?
एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली खुशी खुशी हमने शादी की कि यू नो वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, तो मैंने अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो कॉन्ट्रास्ट पता लगा कि उनके रूटीन्स, रिचुअल्स और मेरी आइडेंटिटी में बहुत बड़ा क्लैश है, और मेरे को उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए जब चलना पड़ेगा तो आई हैव टू लिटरली फॉरगेट माई प्रीवियस वर्जन जो कि मेरी ऑथेंटिसिटी है। तो उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई उस टाइम पे, एंड आई वॉज लाइक एट रॉक बॉटम ऑफ माई लाइफ। तो मैं बहुत ही अनसेफ फील कर रही थी, एंड फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा बस बहुत हो गया, मैं अकेली रह के भी जिंदगी जी सकती हूँ, आई कैन पे माई ओन बिल्स। Then I moved out. और when I moved out, तो मेरे हस्बैंड ने अपने पे वर्क किया और मैंने भी समझा कि he was coming from a system where what he expected out of me was normal and he's taking time to upgrade himself. तो हमने थोड़े therapy sessions लिए and then upgrade किया अपने आप को and then we came back together.
और किताब
बुक लिखने के लिए एक्चुअली मैं अपने ऑफिस में बात करती रहती थी कि ओ दिस इज माय स्टोरी, और दूसरों को इंकरेज करती रहती थी कि यू नो यू शुड नॉट लूज योर सेल्फ इन योर मैरिज एंड यू शुड स्टैंड अप फॉर योर राइट्स एंड इट्स पॉसिबल टू फिक्स थिंग्स अगर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो डोंट जस्ट पुट देम अंडर द कार्पेट। तो फिर मेरे बॉस ने मेरे को बोला यू शुड राइट अ बुक, और वहां से ये आइडिया आया कि चलो किताब लिखते हैं।
बहुत से हजारों लड़कियां शादी को मैनिफेस्ट करती हैं, एक अच्छी शादी का सपना देखती हैं। आपने भी यही कुछ सोचा था?
जी जरूर मैनिफेस्ट किया था। जब हम छोटे थे तो गुड्डे गुड्डियों का खेल आपको पता ही है कि सब लड़कियां खेलती हैं
जी,
और तो उसमें हम यू नो शादी करते थे अपनी गुड़ियाओं की। डेफिनेटली मैंने सोचा था कि मेरी भी शादी होगी एक दिन।
और फिर उसके बाद क्या हुआ?
शादी होने के बाद जैसे ही शादी हुई सबसे पहले तो रिचुअल्स और रूटीन्स का डिफरेंस सामने आने लगा, कि पता लगने लगा कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि मुझे सारा टाइम कंफर्म करना है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है मेरे इन-लॉज की, उसी तरह से उठना है, उसी तरह से बात करनी है। उस तो कोई वॉइस नहीं थी शादी के इमीडिएटली बाद
जी। और आपकी लव मैरिज रही?
हाँ जी, लव मैरिज रही है।
हरविंदर, आपने ये जो बुक लिखी है वाइफ्ड इन इंडिया, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इसको नाम आपने वाइफ्ड इन इंडिया क्यों कहा?
जी, मैं एक NLP कोच हूँ, उसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हमारा जो ब्रेन है ये समझा गया है साइंस में कि वो एक वायरिंग के हिसाब से चलता है। तो इनिशियली मैंने जो नाम रखा था बुक का वो था वायर्ड इन इंडिया, कि हम एक तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर में
जी।
तो फिर क्योंकि मेरी मेन प्रोटैगनिस्ट इज अ वाइफ, तो फिर मैंने वो थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेके नाम वाइफ्ड इन इंडिया कर दिया।
हरविंदर, आपकी किताब में शादी को किस नजरिए से देखा गया है और ये पाठकों को क्या समझाने की कोशिश करते ही है?
मेरी किताब में मैं देखती हूँ शादी को एक कंपेनियनशिप की तरह, क्योंकि हम सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि व्हाई डू वी मैरी, हम शादी क्यों करते हैं
जी?
हम शादी इसलिए करते हैं कि वी हैव अ ग्रेट कंपनी, वी लुक आफ्टर समवन, दे लुक आफ्टर अस, और हमारी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहे लाइफ की। लेकिन जब वही पर्पस डिफीट हो जाए कि हम खुशी नहीं है शादी में, तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना कि या तो इसको फिक्स करना पड़ेगा
जी,
या फिर कुछ क्रिएटिव तरीका सोचना पड़ेगा कि चलो फिर अलग हो जाते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं।
अच्छा, आपकी किताब में इमोशनल डायनेमिक्स की बात की गई है, भावनात्मक संबंधों की बात की गई है, थोड़ा इसे हमें समझाएं, आप क्या कहना चाहती हैं?
जब भी हमारी शादी होती है ना, तो उसके बाद एक रिफ्ट की स्टेज आती है। तो फर्स्ट स्टेज ही रिफ्ट की होती है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्ट पता लगता है कि हम जहां से आ रहे हैं, जिस सिस्टम से आ रहे हैं, फैमिली से, उसमें और नई जो फैमिली है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट सामने आता है
जी।
तो जब हमारे सामने कॉन्ट्रास्ट आता है तो हमें बहुत अनसेफ फील होता है, क्योंकि इतनी सारी लर्निंग एक छोटी सी उम्र में करना, क्योंकि हमारी शादी जल्दी होती है, बिफोर 30 हो जाती है, तो इतनी छोटी सी उम्र में बिना सोशल एक्सपीरियंस के, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड भी बहुत होते हैं अपनी फैमिली में, हमेशा घर में रखा जाता है, हमको ज्यादा किसी से मिलने नहीं दिया जाता, तो बिना किसी सोशल एक्सपीरियंस के हम कैसे नेविगेट करें, एकदम से हम स्ट्रेंजर्स के बीच में आ गए हैं, तो हम अनसेफ फील करते हैं। तो इमोशन का जो एक्चुअल साइकोलॉजी में मतलब है वो ये है कि व्हेन यू फील अनसेफ, तो जब हम अनसेफ फील करते हैं तो हमारे को डर लगता है, फियर आता है हमारे अंदर, और जब फियर आता है तो वी डोंट वांट टू बी देयर, तब हम सोचने लग जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तो इसलिए जो इमोशनल डायनेमिक्स है उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनएविटेबल है, प्रिडिक्टेबल भी है और इनएविटेबल भी है।
तो ये था इस ऑडियो का पहला भाग। इस ऑडियो को हम आपको दो भागों में सुनाएंगे। अगले भाग के लिए हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें, और पूरा ऑडियो सुनने के लिए SBS हिंदी वेबसाइट पर जाएं।
तो दोस्तों, इसी के साथ शो का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे गीत लगातार, और आज का सवाल भी कि आपको बताने हैं मुझे कुछ ऐसे हिंदी गीत जिनमें सावन शब्द आता है। जवाब भेजने के लिए नंबर है 04397997667। भेज दीजिए जल्दी से, और आपके मैसेजेस जो मेरे पास आए पड़े हैं उनका भी एक रुख करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ SBS हिंदी पर। प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है और SBS हिंदी पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं सुरों की महफिल। तो आपके मैसेजेस भी जो मेरे पास आए हुए हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। हेमलता पुरोहित जी का मैसेज आ गया है। एक तो आपने भेज दिया है जवाब जो फिल्म का कॉन्टेस्ट चला रहे हैं फिल्म पासिस का, उसके लिए, और साथ ही कहती हैं हेमलता जी, नमस्ते स्वाति जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, आई एम एंजॉइंग। सावन शब्द का उन्होंने गाना बताया है, सावन का महीना पवन करे शोर। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। इसके अलावा मेरे पास वीना जी का मैसेज आया है। वीना जी ने बताया है, बदरा हो बदरा छाए के झूले पड़ गए कि मेले लग गए हाय कि मच गई धूम रे आया सावन झूम के। जी हाँ, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी का गाना आपने मुझे याद दिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी आपके मैसेज के लिए भी। आपके और भी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अभी भी भावना जी का मैसेज आया है, उन्होंने बताया है सॉन्ग विद वर्ड सावन, कहती हैं सावन के झूले पड़े तुम चले आओ। ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है, पर बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपके मैसेज के लिए। अभी अभी विद्या जी ने भी जवाब भेजा है, उन्होंने बताया है गाना सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय बाय मीका सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, बहुत ही पॉपुलर गाना आपने बताया आज। भावना जी ने बताया है कि सावन के झूले पड़े जो उन्होंने मैसेज भेजा था, इस अ पॉपुलर हिंदी सॉन्ग फ्रॉम 1979 बॉलीवुड फिल्म जुर्माना, अमिताभ और राखी जी का और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ। जी भावना जी, आपके मैसेज के बाद मैंने चेक किया तो मुझे लगा ओह ये है वो गाना। एक बार ही कभी होता है ना कि लिरिक्स पढ़कर या शब्द पढ़कर आपको ध्यान में नहीं आता कि कौन सा गाना है, तो बस वही हुआ मेरे साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए और मुझे बताने के लिए फिर से। तो दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि मुझे अब जाना होगा। जाते जाते मेरे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल मेंशन उन सभी को जिन्होंने मैसेज भेजकर आज मेरा साथ दिया। राजेंद्र बोहरा जी, ख्याति जी, आशीष बोहरा जी, जसबीर सिंह, हार्दिक खेतानी, भूमिका कपूर, मनीषा पटेल, निशा भटनागर, हेमलता पुरोहित जी, वीना जी, भावना पटेल और विद्या जी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को और बाकी सभी जो सुन रहे हैं जिन्होंने मैसेज नहीं भेजा, आपको भी आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय एक नए प्रोग्राम, नए खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत। SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभरात्रि।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।